आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अमन है और इस ऑडियो में हम क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सॉइल को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आप सब भी अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक निकालिए एंड ओपन करिए पेज नंबर 99। तो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट ऑडियो में पढ़ा था सॉइल के बारे में कि सॉइल क्या होता है, हमने उसकी इम्पोर्टेंस देखी, उसके अलग अलग यूजेस देखे और हमने ये भी देखा डैट सॉइल इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वो हमारे जीवन का एक इनसेपरेबल यानी हमसे अलग ना होने वाला एक हमारी जिंदगी का हिस्सा है, जिसके गर्भ में अलग अलग पेड़ पौधे जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं और उनका पालन पोषण होता है। देयरफोर सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्थ एंड एज वेल एज ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी के साथ हमने पढ़ा सॉइल टीमिंग विद लाइफ यानी सॉइल के अंदर अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्थ वॉर्म्स, बीटल्स एटसेट्रा। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सॉइल के अंदर रहकर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं यानी उसको और भी ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं। इसके बाद हमने सॉइल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है, अलग अलग तरीके से हम सॉइल को कैसे पॉल्यूशन होने से बचा सकते हैं, जैसे कि सॉइल को पॉलीथिन बैग्स, प्लास्टिक्स, आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स, अलग अलग तरीके के केमिकल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये सभी चीजें हमारी सॉइल को पॉल्यूट करती हैं, उनको गंदा करते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है और जितने भी प्लांट्स हैं ना वो ग्रो कर पाते हैं और जितने भी एनिमल्स सॉइल के अंदर रहते हैं वो भी मर जाते हैं। तो हमने सॉइल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि अगर हम इन वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स को ट्रीट करके, बायोकेमिकली इसका ट्रीटमेंट करके अगर हम इसको रिलीज करें तो हमारी जो सॉइल है उसका जो पॉल्यूशन है वो मिनिमाइज्ड हो जाएगा यानी वो कम हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने पढ़ी। इसी के साथ हमने सॉइल प्रोफाइल के बारे में भी पढ़ा दैट व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल, सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट लेयर्स। इससे रिलेटेड हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी जहां पर हमको सॉइल के अलग अलग लेयर्स के बारे में पता लगा, ह्यूमस, वाटर, क्ले, सैंड, ग्रेवल, यानी हमारी सॉइल इन सभी चीजों से मिलकर बनी हुई है। इसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, क्ले, सैंड, ग्रेवल यानी छोटे छोटे स्टोन्स, ये सभी चीजें हमारी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमने वेदरिंग के बारे में पढ़ा यानी सॉइल फॉर्मेशन को हम वेदरिंग बोलते हैं। जब बड़े बड़े रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, तो एज अ रिजल्ट हमें सॉइल मिलती है जो कि किस प्रोसेस से मिलती है, इट इज वेदरिंग। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट सॉइल प्रोफाइल दैट अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल के अंदर अलग अलग लेयर्स होती है जिनको हम हॉरिजन्स के नाम से जानते हैं, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड द लास्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज बेडरॉक। इन सभी लेयर्स के बारे में हमने पिछली ऑडियो में पढ़ा था। तो चलिए, हमारी एक रिवीजन हो गई है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। सो ऑन पेज नंबर 99 द न्यू टॉपिक इज सॉइल टाइप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स, दीस इंक्लूड सैंड एंड क्ले। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड, दैट इज द पेरेंट रॉक। जैसा कि यहाँ लिखा है कि जब रॉक्स की वेदरिंग होती है यानी उसका ब्रेकडाउन होता है तो उसकी वजह से एज अ रिजल्ट हमको छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं अलग अलग मटेरियल्स के। ये जो पार्टिकल्स हैं इनके अंदर सैंड होती है, क्ले प्रेजेंट होती है, और ये जो प्रेजेंस ऑफ सैंड और क्ले है ये डिपेंड करता है कि किस रॉक के ब्रेकडाउन की वजह से हमें पार्टिकल्स मिले हैं। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट में सैंड है, कितनी अमाउंट में क्ले है। और जिस रॉक से हमें ये मिलता है उसको हम पेरेंट रॉक बोलते हैं। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। तो आप सभी प्लीज इसे अंडरलाइन कर लीजिए। द डेफिनेशन ऑफ सॉइल, द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। यानी जो बड़ी बड़ी रॉक के पार्टिकल्स और उसी के साथ ह्यूमस का जो मिक्सचर होता है इसी को बोला जाता है सॉइल, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। यानी किसी भी मिट्टी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियास, अलग अलग प्लांट के रूट्स जो होते हैं, या फिर जो अर्थवर्म्स हमारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, ये सभी हमारी सॉइल के बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे अर्थ के ऊपर जो लायंस है उनका एक अपना अलग अस्तित्व है, इंसानों का अपना अलग अस्तित्व है, उसी तरीके से अर्थ के ऊपर प्लांट्स की भी रिक्वायरमेंट है, ह्यूमंस की भी रिक्वायरमेंट है। जिस प्रकार अर्थ के ऊपर हर एक चीज की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके से हमारी सॉइल के अंदर भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, अर्थवर्म्स हो गए, ये हमारे सॉइल के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंश होते हैं, उनके इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो कि हमारी सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं, उसकी फर्टिलिटी बनाए रखते हैं। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। यानी जो हमारी सॉइल होती है हम उसको क्लासिफाई करते हैं उसके पार्टिकल्स के बेस के ऊपर। यानी अलग अलग सॉइल्स में पार्टिकल का जो साइज है वो शायद अलग हो सकता है, उसकी शेप अलग हो सकती है, या फिर वो अलग कलर का हो सकता है। उसी बेस्ड पे हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। यानी जिस मिट्टी के अंदर ज्यादा अमाउंट में बड़े बड़े पोर्शंस यानी बड़े बड़े पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उस तरह की सॉइल को हम बोलते हैं सैंडी सॉइल। प्लीज आप सभी इसको पेंसिल से अंडरलाइन करिए। दैट इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। नेक्स्ट, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्लेई सॉइल। यानी अगर हमारी मिट्टी के अंदर जो फाइन पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो ऐसी सॉइल को हम बोलेंगे क्लेई सॉइल। अगेन अंडरलाइन दिस लाइन, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्लेई सॉइल। इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी। यानी अगर हमारी सॉइल के अंदर लार्ज पार्टिकल्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स बराबर के प्रोपोर्शन यानी बराबर मात्रा में प्रेजेंट है तो ऐसी सॉइल को हम बोलते हैं लोमी सॉइल। अगेन प्लीज अंडरलाइन दिस, इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी। Thus, the soil can be classified as sandy, clay and loamy. तो इसी प्रकार से हमने soil को तीन types में classify करा, sandy soil, clay soil and loamy soil, depending upon the size of particles. कि particle का size बड़ा है, छोटा है, या फिर दोनों ही size के particles बराबर मात्रा में present हैं. The size of the particles in a soil has an influence on its properties. Sand particles are quite large. They cannot fit close together. So there are large spaces between them. जैसा कि यहाँ लिखा है कि सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उनका साइज उनकी प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि जो सैंड पार्टिकल्स है वो थोड़े से बड़े होते हैं, डेट इज लार्ज पार्टिकल्स, इसीलिए ये आपस में बहुत ही फिट नहीं बैठते, यानी इनके पार्टिकल्स एक साथ फिट नहीं बैठ सकते। सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, इसीलिए सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होता है, यहाँ पर स्पेसेस होती है पार्टिकल्स के बीच में, और ये जो स्पेसेस होती है वो एयर से भरी होती है। जैसा कि यहाँ लिखा है, दे कैन नॉट फिट क्लोज टूगेदर, सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, दीज स्पेसेस आर filled with air. We say that the sand is well aerated. Water can drain quickly through the spaces between the sand particles. So, sandy soils tend to be light, well aerated and rather dry. Please आप इस line को underline करिए. So, sandy soils tend to be light, well aerated and rather dry. सैंडी सॉइल्स के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है वहां पर एयर फिल्ड होती है, और इसी के कारण अगर हम सैंडी सॉइल में वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे, तो वो बहुत ही इजीली वहां से पेनिट्रेट कर जाएगा, यानी उन जो जगह है वहां पर होल्स बने हुए हैं, स्पेसेस हैं, उसके थ्रू वो निकल जाएगा सारा पानी। इसीलिए जो हमारी सैंडी सॉइल है वो बहुत ही ज्यादा लाइट होती है, लाइट होने के साथ साथ इट इज वेल एरेटेड, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एयर होती है, एंड रेदर ड्राई, और ये सूखी होती है क्योंकि पानी इसके अंदर नहीं रुकता। क्ले पार्टिकल्स बींग मच स्मॉलर पैक टाइटली टूगेदर लीविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, और जो क्ले पार्टिकल्स है क्ले सॉइल में, इनके पार्टिकल्स छोटे होते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के ठीक पास पास फिट होती है, बहुत ही टाइटली फिटिंग होती है इनके पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से बहुत ही लिटिल स्पेस इनके बीच में रहता है, और ये पानी को अपने अंदर पकड़ कर रख सकते हैं, दे कैन रिटेन वाटर। इसीलिए यहाँ लिखा है दैट अनलाइक सैंडी सॉइल वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले, यानी क्ले के अंदर जो टाइनी गैप्स है यहाँ पर वाटर होल्ड हो सकता है। सो क्ले सॉइल्स have less air, but they are heavy as they hold more water than the sandy soils. Yani jo clay soil hai, yahan par hawa to kam hai, lekin ye heavy hoti hai, kyunki ye jyada se jyada water ko store kar sakti hai. To please aap ise underline kar lijiye, that clay soils have less air, but they are heavy as they hold more water than the sandy soils. Now, next, the best top soil for growing plants is loam. Loamy soil is a mixture of sand. अब जैसा कि यहाँ लिखा है, जो सबसे best soil होती है plants की growth के लिए, वो soil होती है loam soil, that is loamy soil, because it is a mixture of sand, clay and another type of soil particle known as silt. Please underline this. Starting from loamy soil, that loamy soil is a mixture of sand, clay and another type of soil particle known as silt. Now what is silt? Silt occurs as a deposit in riverbeds. Riverbeds yani jo hamari nadiyan hoti hai uske theek niche zameen par jo bhi cheeze deposit hoti rehti hai usi ko hum bolte hain silt. The size of the silt particles is between those of sand and clay. Yani, silt ka jo particles hai chote chote, inka jo size hai, wo clay aur sand ke in between hota hai. The loamy soil also have humus in it. It has the right water holding capacity for the growth of plants. Hamari jo loamy soil hai, इसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में ह्यूमस है जो कि उसको फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी के साथ इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इतनी अच्छी है कि बहुत ही इजीली प्लांट्स ग्रो कर सकती हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि सॉयल कितनी अमाउंट में पानी को रोक सकती है, वाटर को होल्ड कर सकती है, उसी को बोला जाता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सॉयल, कि हमारी सॉयल कितने टाइप्स की होती है। इसके आगे एक्टिविटी 9.3, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ क्ले, लोमी एंड सैंडी सॉइल्स, टेक अ फिस्टफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल्स, रिमूव एनी पेबल्स, रॉक्स और ग्रास ब्लेड्स फ्रॉम इट, नाउ एड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीट द सॉइल। आपने क्या करना है, आपने क्ले, लोमी एंड सैंडी सॉइल्स के सैंपल्स को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद वन फिस्टफुल ऑफ सॉइल, यानी हाथ में एक मुट्ठी मिट्टी भरकर आपने वो सैंपल लेना है। लेने के बाद उसके अंदर से आपने अगर पत्थर प्रेजेंट है, छोटे छोटे रॉक्स प्रेजेंट है या फिर ग्रास ब्लेड्स उसके अंदर प्रेजेंट है, आपने उसको रिमूव करके उसको क्लियर एंड क्लीन बनाना है। क्लीन बनाने के बाद आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर वाटर ऐड करना है, और जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं ठीक वैसे ही आपने सॉइल को भी नीड करना है, इसको गूंदना है। एज यू कैन सी इन फिगर 9.4 ए पार्ट, एड जस्ट इनफ वाटर सो डैट अ बोल, एज यू कैन सी इन फिगर 9.4 बी पार्ट, कैन बी मेड फ्रॉम इट, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी। आपने इसके अंदर इनफ वाटर यानी इतनी अमाउंट में पानी डालना है कि वो एक बॉल की तरह बन जाए, लेकिन आपने उसको स्टिकी नहीं बनाना है, यानी वो नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा चिपचिपा स्टिकी नहीं होना चाहिए। ट्राई टू मेक अ बॉल फ्रॉम दिस सॉइल ऑन अ फ्लैट सरफेस, रोल दिस बॉल इनटू अ सिलेंडर, ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर। आपने क्या करना है, इस बॉल को सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट करना है। ये हम कैसे करेंगे, अगर हम बॉल को हमारे जमीन के ऊपर रोल करेंगे तो रोल करने से वो सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस शेप से हमें एक रिंग बनानी है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैंपल्स ऑल्सो, डज द एक्सटेंट टू विच अ सॉइल कैन बी शेप्ड इंडिकेट इट्स टाइप। अब आपने सेम एक्टिविटी तीनों सैंपल्स के साथ करना है, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल एंड सैंडी सॉइल, और आपने ये देखना है कि जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो सॉइल की जो शेप है क्या उससे ये पता लगता है कि वो सॉइल कौन सी है, उसका टाइप क्या है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, इससे आपको सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता लग जाएंगे। कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचूज, एंड योर क्वेश्चन इज, क्या आप बता सकते हैं कि किस मिट्टी का प्रयोग करके हम अलग अलग मटके, खिलौने और स्टैचूज को बना सकते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है, डैट इज क्लेई सॉइल, यानी लोमी, सैंडी एंड क्लेई सॉइल में से जो क्लेई सॉइल होती है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में पानी को रिटेन कर सकती है। इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस क्ले की तरह होती है, और हम इसको नीड करके इसके अलग अलग शेप्स बना सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, और इसी से हमारे जो पॉट्स, टॉयज और स्टैचूज बनते हैं वो क्ले सॉइल की मदद से ही बनती है, क्योंकि जो सैंडी सॉइल है वो वाटर रिटेन ही नहीं करेगी और वो हमेशा सूखी रेत की तरह रहेगी, और जो लोमी सॉइल है वो वाटर को रिटेन करेगी बट वो सही तरीके से शेप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। सो दिस वॉज योर एक्टिविटी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सॉइल, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। तो अब हम सॉइल की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। बोजो एंड पहेली मार्क्ड टू डिफरेंट स्क्वेयर्स ऑफ 50x50 सेंटीमीटर ईच, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड द अदर ऑन द कच्चा अनपेव्ड रोड, दैट इज कच्चा रोड। बोजो और पहेली ने दो स्क्वेयर्स मार्क करे हैं, अलग अलग स्क्वेयर्स जो कि 50x50 सेंटीमीटर के हैं, दैट इज 50 सेंटीमीटर के उसकी साइड है स्क्वेयर की। एक स्क्वायर उन्होंने घर की फ्लोर के ऊपर बनाया है और जो दूसरा स्क्वायर है वो उन्होंने कच्ची रोड यानी अनपेव्ड रोड के ऊपर बनाया है। दे फिल्ड टू बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विद वॉटर। दे एम्प्टीड द वॉटर फ्रॉम द बॉटल्स वन ईच एट द सेम टाइम इन द टू स्क्वायर्स। दे ऑब्जर्व्ड दैट द वॉटर ऑन द फ्लोर फ्लोड डाउन एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब्ड ऑन द कच्चा रोड। ऑन द अदर हैंड द वॉटर वॉज एब्जॉर्ब्ड। बोजो और पहेली ने स्क्वायर बनाने के बाद दो बॉटल्स ली और दोनों के अंदर ही उन्होंने वाटर फिल कर दिया। जब उन्होंने ये बॉटल को वाटर फिल कर घर के अंदर दैट इज हाउस के अंदर जो फ्लोर के ऊपर स्क्वायर बनाया था, जब उन्होंने इस वाटर बॉटल को उसके ऊपर एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया तो और पानी गिरा दिया और वही पानी इन्होंने एक बोतल भर के उस स्क्वायर पे गिराया जो कि कच्ची रोड के ऊपर बना हुआ था। इन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो कच्ची रोड पे हमने पानी फेंका वो एब्जॉर्ब हो चुका था यानी वो नीचे मिट्टी में चला गया और जिन्होंने फ्लोर पे फेंका वो पानी वैसा का वैसा ही वहां पर फ्लो होता गया, बहता गया। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। एक्टिविटी 9.4। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू थ्री टीम्स। नेम द टीम ए बी एंड सी। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वॉटर पासिस डाउन द सॉइल। यू विल नीड अ होलो सिलेंडर और अ पाइप। एनश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर। सम सजेशंस फॉर ऑब्टेनिंग सच अ पाइप आर गिवन बिलो। तो आपने क्या करना है, तीन टीम्स में डिवाइड करना है अपनी क्लास को, टीम ए, टीम बी एंड टीम सी। उसके बाद आपने ये पता लगाना है कि कितनी जल्दी जो वाटर है वो मिट्टी के नीचे पास कर जाता है यानी इट पासिस डाउन द सॉइल। अब इसके लिए आपको एक हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप की जरूरत पड़ेगी। आपने एक हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप लेनी है और ये कोशिश करनी है कि हर टीम के पास सेम डायमीटर की पाइप हो। कुछ सजेशंस ही आपको बता रखे हैं फॉर पाइप। फर्स्ट, इफ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टिन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम। सेकेंड, इफ पीवीसी पाइप अप्रॉक्स डायमीटर 5 सेंटीमीटर इज अवेलेबल कट इट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस एंड यूज देम। दो तरीके से आप पाइप्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज अगर आपके पास एक स्मॉल टिन कैन है, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी के कैंस आते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं नीचे से उसकी बॉटम को रिमूव करके। और दूसरा पीवीसी पाइप्स, जो कि हमारे घर में व्हाइट कलर की पाइप्स होती है पानी के कनेक्शंस के लिए, अगर उसका एक छोटा पीस है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। पोर 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली। फॉर मेजरिंग 200 ml water you can use any empty 200 ml bottle. Note the time when you start pouring water when all the water has percolated leaving the pipe empty. Note the time again. Is activity mein aapne kya karna hai, aapne ek jagah par kafi sari soil ko collect karke ikattha karke rakhna hai aur jo aapne pipe li hai us pipe ko about 2 cm deep tak aapne usko dig karke रख देना है ग्राउंड के ऊपर। नाउ यू हैव टू मेजर 200 ml वाटर इन एनी वाटर बॉटल और यू कैन से इन एनी कैन और एनी मेजरिंग सिलेंडर। ये 200 ml पानी आपने इस पाइप के अंदर डाल देना है। द टाइम यू पोर दिस वाटर यू हैव टू ऑब्जर्व और यू हैव टू नोट डाउन द टाइम। आपने टाइम को चेक करते रहना है कि जब आपने वाटर को डाला तब से स्टार्ट करके किस टाइम तक वो पूरी की पूरी पाइप एम्प्टी हो गई, खाली हो गई और सारा का सारा पानी नीचे पोर हो गया। इसको आपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट डाउन करना है। बी केयरफुल नोट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप व्हाइल पोरिंग। आपने ये भी ध्यान देना है कि पानी डालते वक्त वो जो पानी है ना ही वो पाइप से निकलकर बाहर गिरना चाहिए, ना ही आपने इतना ज्यादा पानी डालना है कि वो सारा का सारा पानी बाहर फैल जाए। आपने आराम से डालना है, धीरे डालना ताकि वो बाहर नहीं फैली। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। नाउ अ फॉर्मूला हैज बीन गिवन टू यू, परकोलेशन रेट डैट इज ml पर मिनट विच इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वॉटर इन ml अपॉन परकोलेशन टाइम इन मिनट। तो प्लीज आप सभी इस फॉर्मूले को एक बॉक्स बनाकर इसको हाईलाइट कर लीजिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द परकोलेशन। ओके, इसकी जो यूनिट्स होती है इट इज मिलीलीटर पर मिनट। यहां पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हमने कितनी अमाउंट में वॉटर लिया था, हमने 200 ml पानी लिया, तो ऊपर आप लिखोगे 200 ml और नीचे परकुलेशन टाइम में आप वो टाइम लिखोगे जितने टाइम के अंदर आपका वो सारा का सारा वॉटर पोर डाउन हो गया। और आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज डैट फॉर अ सर्टेन सैंपल इट टुक 20 मिनट्स फॉर 200 ml टू परकुलेट। सो रेट ऑफ परकुलेशन इज 200 ml डिवाइडेड बाय 20 मिनट्स एंड यू कैन गेट 10 ml पर मिनट विच इज द रेट ऑफ परकुलेशन। बच्चों यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, अगर 200 ml पानी को परकुलेट होने में 20 मिनट का समय लगता है तो अगर हम वो रेट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 मिलीलीटर प्रति मिनट। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन इन योर सॉइल सैंपल, कंपेयर योर फाइंडिंग्स विद अदर्स एंड अरेंज द सॉइल सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एट द रेट ऑफ परकुलेशन। आपने क्या करना है, अलग अलग सॉइल्स पे ये एक्टिविटी करनी है, अलग अलग सैंपल्स पे, और आपने परकुलेशन के रेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो दिस वॉज योर एक्टिविटी एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉइस्चर इन सॉइल। इस टॉपिक में हम सॉइल के अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर पास्ड थ्रू अ फार्म लैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे? परहैप्स यू नोटिस्ड दैट द एयर अबव द लैंड इज शिमरिंग। व्हाई इज इट सो? ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। कभी आप अगर गर्मियों के दौरान यानी हॉट समर डे अगर कोई हो तो अगर आप ऐसे दिनों में किसी फार्म लैंड किसी खेती बाड़ी वाली जगह से अगर आप वहां से गुजरोगे तो आपको एक शिमरिंग सी फीलिंग लगेगी, यानी आपको वहां पर बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर गर्मी सी महसूस होगी। तो ऐसा क्यों है, तो ये बात हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। सो हेयर इज एक्टिविटी 9.5। Let's start. Take a boiling tube, put 2 spoonfuls of a soil sample in it. Heat it on a flame and observe it. Let us find out what happens upon heating. आपने क्या करना है? आपने एक boiling tube लेनी है और उसके अंदर 2 चम्मच किसी भी soil का sample डाल देना है। डालने के बाद उस boiling tube को आपने फ्लेम के ऊपर गर्म करना है। यू हैव टू हीट इट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ऑब्जर्व। आप उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करिए। नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस अपॉन हीटिंग। हीटिंग के बाद क्या होता है? डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर? इफ यस, वेयर डिड यू फाइंड देम? क्या आपने कहीं पर भी पानी की बूंदों को ऑब्जर्व करा, कहीं आपने देखा? और अगर देखा भी तो कहां पर देखा? तो यहां पर है इफ यस वेयर डिड यू फाइंड देम। ऑन हीटिंग वॉटर इन द सॉइल इवेपोरेट्स मूव्स अप एंड कंडेंसेस इन द कूलर इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। यानी जब हमने सॉइल को हीट करा तो हीट करने पे सॉइल के अंदर जो पानी प्रेजेंट है वो इवेपोरेट हो गया, भाप बन के जब वो ऊपर की तरफ जाने लगा तो वो ऊपरी भाग में जो कि कूलर रीजन है वहां पर वो कंडेंस होके दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अपीयर हुआ। ऑन अ हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू शिमर। यानी जब किसी गर्मी से भरे दिन में
अगर आप किसी फार्म लैंड के पास से गुजरोगे तो वहां जो भी वेपर्स पानी की भाप जो सॉइल में से बाहर आती है वो सनलाइट से रिफ्लेक्ट होके और एयर से रिफ्लेक्ट होके शिमरिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, जब आपने सॉइल को हीट कर लिया तब आप उसको ट्यूब से बाहर निकाल लीजिए। कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज नॉट बीन हीटेड, और जिस सॉइल को आपने हीट नहीं करा आप उसके साथ इस सॉइल को कंपेयर कीजिए। नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू, और आप इन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नोट कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्टिविटी 9.5। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक मॉइस्चर इन सॉइल खत्म होता है। तो बच्चों दिस वॉज ऑल फॉर नाउ, आपका होमवर्क है आपने अच्छे से चैप्टर की रीडिंग करनी है, जिन पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन करवाया है उनको रिवाइज करना है और लर्न करना है। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट ऑडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।